हमारा परम सौभाग्य है कि इस सत्र के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्राता ब्रिज मोहन जी है। हमारे बीच में आप उपस्थित है। मैं पार्ला की बहनों से निवेदन करती हूँ कि वह आकर उनका पुष्पों के द्वारा अभिवादन करें और साथ में हम सब भी करतल ध्वनि के द्वारा इनका स्वागत करें। आपका जन्म स्थान अमृतसर है और इसीलिए वहां के गोल्डन टेंपल की तरह बाबा ने परमात्मा ने उनके गोल्डन हार्ट को देखकर उन्हें पहचान कर उन्हें ज्ञान अमृत बरसाने का वरदान भगवान ने उन्हें दे दिया है। आपने दिल्ली से 1953 में कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया तथा 1955 में लॉ की डिग्री हासिल की। 1956 में आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। 1955 में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए। 1973 तक आप FCI फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे और पश्चात आपने अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी संस्था में संपूर्ण रीति से समर्पित किया। तब से लेकर आप दिल्ली में स्थित रहकर सारे विश्व में ईश्वरीय सेवा हेतु भ्रमण कर चुके हैं। वर्तमान समय आप दिल्ली के गुड़गांव में स्थित हमारा बहुत विशाल कैंपस ओम शांति रिट्रीट सेंटर के मुख्य संचालक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हमारे संस्था के महासचिवों में से एक है। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के भी सचिव है। आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्य वक्ता है। आप प्यूरिटी हमारी जो पत्रिका छपती है हर मास दिल्ली से, उनके भी आप चीफ एडिटर है। आप राजनैतिक प्रभाग के चेयरपर्सन है। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। आपने ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस के कई कॉन्फ्रेंसेस में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। आपने इस ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है उन्हें 8 अलग अलग भाषाओं में बनाने के लिए आप निमित्त बने, प्रेरणा दी और आपने कई विषयों पर स्पिरिचुअल बुक्स आध्यात्मिक किताबें भी लिखी है। आपको एक विशेष रुचि है और वो है प्रश्न उत्तर की। इसीलिए ये मौका है, अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो वो लिख करके स्टेज के पीछे दे सकते हैं तो जरूर इनका आपको समाधान मिलेगा। आप पीस ऑफ माइंड तथा अन्य टीवी चैनल्स पर भी समय प्रति समय आते हैं, उनके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। आपके जीवन में एक बहुत सुंदर संतुलन है, वो है गंभीरता एवं हर्षित मुक्ता, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर, जो हम बहनों को हर समय एकदम लाइटनेस का अनुभव कराते हैं और इसके कारण वो ईश्वरीय ज्ञान को बहुत सहज और स्पष्ट रूप से हमारे सामने उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने देखा है कि उनका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की जो शक्ति है वो इतनी नेचुरल और जबरदस्त है कि उनको उदाहरण देने के लिए कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो परिस्थितियों को, हर सीन्स को जो देखते हैं, उनमें से वो बहुत सहज रीति से उठा पाते हैं और हमारे सामने वो दे देते हैं। और इसलिए आज हम सब अभी इनका बहुत ही उदाहरण युक्त वक्तित्व हम अभी सुनेंगे। भ्राता ब्रिज मोहन जी,
ओम शांति। इतने सारे बिजनेसमैन और बहनों को क्या कहूं मैं, फीमेल बिजनेसमैन या बिजनेसमैन या क्या कहा जाए। थानेदार के साथ जो आते हैं उसको थानेदार नहीं कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ वो डॉक्टर नहीं, तो बिजनेसमैन की फीमेल का क्या नाम होता है आजकल के जमाने में मुझे पता नहीं। पर जो भी हैं, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाई गई थी। एक तो ये था कि सदा हंसते रहो, हैं? तो हम हंसने से ही शुरू करते हैं। ऐसे नहीं समझना कोई लाफिंग क्लब में आप बैठे हैं। जरा अपने अंदर से अपने लिए ही थोड़ा मुस्कुराइए तो देखें कैसे, अपने आप से मुस्कुराइए, कोई देख नहीं रहा आपको, आप आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं ये समझिए, तो फिर देखिए कैसा लगता है थोड़ी देर के लिए। वाह, बहुत अच्छा। एक भाई थे, वो आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे थे शीशे के आगे, तो उसकी जुगल आई, बोला क्या कर रहे हो जी? कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ रात को मैं सोते समय हंसते हुए कैसे लगता हूँ। अच्छा, तो इसलिए सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है, जिसमें कोई खर्चा नहीं आता और जिसको आप फैला सकते हैं एक कंटेजियस डिजीज की तरह, वो है हंसते रहो मुस्कुराते रहो। क्योंकि आप बेमतलब मुस्कुराओगे तो भी वो सोचेगा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं अभी मुझे देखकर। मेरे पूर्व वक्ता बच्चों की मिसाल दे रहे थे, तो आप देखेंगे सड़क पर आपको बच्चों की बस जाती हुई मिल जाए, स्कूल जाते हुए बच्चों की, तो आपको देख के टाटा करना शुरू कर देंगे, नाचना शुरू कर देंगे, आपको जानते नहीं कुछ नहीं। जब तक उनकी बस आपके आगे चलती रहेगी वो कुछ ना कुछ आपको अपना कर्तव्य दिखाते रहेंगे, हंसेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर यही बात किसी बड़े आदमी के साथ हो जाए कि रेड लाइट पे आपकी गाड़ी खड़ी और आप किसी को देख के मुस्कुरा दें, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, तो ये है ना, वो बता रहे थे कि छोटा बच्चा बहुत महात्मा जैसा होता है। आज हम आपसे, क्योंकि आधा समय तो गीत गाने में चला गया, आधा इंट्रोडक्शन देने में चला गया, दो आरजू में कट गए, तो इंतजार में टाइम मेरा बहुत छोटा होता जा रहा है, या तो आप बाद में एक्सटेंशन मांग लेना थोड़ी। आज हम आपसे एक बात पूछते हैं, ये जो सब बिजनेस धंधा करते हैं आप, है ना, कहलाते तो सभी बिजनेसमैन ही है ना, छोटे बड़े बिजनेसमैन। सबसे पहले तो आप लोगों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। हम सिवाय परमात्मा के किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करते, पर बिजनेसमैनों को कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज हमारे देश की 130 करोड़ आबादी है, तरह तरह के लोग रहते हैं, महलों में भी रहते हैं, झोपड़ियों में भी रहते हैं, उनको उनके घर तक चाहे दाल चावल पचाना हो या पिज्जा पचाना हो या कुछ भी पचाना हो, कौन पचाता? क्या राजनीतिक पचाते हैं? वो तो बैरियर ही लगाते रहते हैं, यहाँ का माल वहां नहीं जा सकता, ये लाओ वो लाओ। क्या डॉक्टर पचाते हैं? उनके पास तो मरीजों को जाना पड़ता है। क्या वकील पचाते हैं? कोई नहीं पचाता। उनको रोज का रोटी कपड़ा मकान अगर कोई पचाता है, रियल सेंस में, जवानी जमा खर्च नहीं, वो पचाते हैं बिजनेसमैन। तो आपका रोल आज के समाज में कितना रियल और अच्छा है कि जिस प्रकार के व्यक्ति को जिस प्रकार की चीज जहां चाहिए उसको कहां से लाकर उसको पेश करना आसान काम नहीं है। एक गायक ने कहा था, फूल जंगल में खिले किसके लिए, अगर जंगल में फूल खिले वहीं मुरझा गए किस काम के। उस चीज की यूटिलिटी को देखते हुए दुनिया के सब तरह के बैरियर, सब तरह की रुकावटों को रोककर उसके आगे कोई हाजिर करता है तो कौन करता है बिजनेसमैन। इसलिए अपने सम्मान की और अपने कर्तव्य की महानता की अपनी पीठ थपकाकर जोर से अपने आप को शाबाश दीजिए। वाह, भगवान हमें बिजनेसमैन पैदा किया है, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आइए, आप बिजनेस क्यों करते हैं, छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं। अब छोटे बिजनेस की भी एक कहानी है कि बॉम्बे की एक लड़की थी, उसकी शादी, आजकल इंटरनेट में रिश्ते होते हैं, तो आया हिमाचल प्रदेश के एक टिम्बर मर्चेंट हैं, तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा ये रिश्ता ठीक बैठता है, कुंडलियां भी मिल गई, तो उन्होंने उसके शादी तय करने लग गए। आजकल लड़के के वालों से पूछना मुश्किल होता है कि भाई तू तो कौन सा टिम्बर मर्चेंट है। अच्छा, फिर भी उन्होंने कहा पूछ लेना अच्छा है, तो उन्होंने कहा क्या आपके हिमाचल में कोई फॉरेस्ट वगैरह आपने खरीदे हुए हैं। बोले नहीं, इतना बड़ा तो नहीं है, तो क्या आप वहां से आरे से लॉग्स कटवा के ब्यास नदी के द्वारा भेजते हैं, इतना बड़ा तो नहीं है, तो फिर आपका कोई शिमला में बहुत अच्छा फर्निशिंग का इंटीरियर डेकोरेशन का कोई बिजनेस है। नहीं, आखिर निकला कि वो दातन बेचते हैं, शिमला की माल पे दातन भेजे हैं, तो टिम्बर मर्चेंट ही हो गए ना। तो इसलिए ये भी सवाल है, परंतु वट एवर इट इज, ये देखिए अपने मन से पूछिए कि हम बिजनेस करते हैं इसका भी कोई पर्पज होगा ना, किस लिए करते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम बिजनेसमैन ही हैं, पहले हम इंसान हैं फिर हम बिजनेसमैन हैं। आज की दुनिया में क्योंकि वैल्यू सिस्टम जरा ट्विस्टेड है, इसलिए वो पहले बंदे का पूछते हैं कि कौन है, उसके बाद उसको वैल्यूएट करते हैं भी कैसा इंसान होगा। बहन जी को भी शायद इसीलिए मेरा परिचय देना पड़ा कि वो देखेंगे भाई कौन रिटायर्ड सा बंदा लगता है, क्या आके बोलेगा, थोड़ा बता दो, चुपचाप बैठ के सुन तो लेंगे, तो इसलिए ब्रांड नेम चलता है। अब ये बताइए कि जो आप बिजनेसमैन अगर सारा दिन 24 घंटे सोते जागते आपको बिजनेसमैन ही रहेगा तो क्या होगा। जिस चीज की माला फेरोगे वो हो जाएगी। आपने सुना हुआ है कि कपड़े के दुकान वाले थे, वो रात को अपनी चादरें फाड़ते रहते थे बजाजी समझ करके भी ये इतने गज काटना है, बिजनेसमैन ही कहां तक जा सकती है। तो यहां तक हो गया कि अगर हम इतने बड़े बिजनेसमैन ही रह गए तो हम अपने घर वालों के साथ भी बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, हमारे रिलेशनशिप में भी हम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए, बिजनेसमैन बाद में इंसान पहले या इंसान बाद में बिजनेसमैन पहले। आजकल आप शादी ब्याह के विज्ञापन देखिए क्या लिखा होता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी इतनी फैक्ट्रियां, इतनी कंपनियां, इतने कॉरपोरेट का मैनेजर है, उसके लिए ये लड़की चाहिए। और लड़की वाले भी लिखते हैं इसके पिताजी के विदेश में बिजनेस है, ये वो है। ये नहीं लिखते एक अच्छा इंसान चाहिए, ये लिखते हैं कभी अच्छा इंसान चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सब क्वालिफिकेशन लिख देंगे, बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ फलाना। तो हम इतने डीप भी बिजनेसमैन ना बन जाएं कि बिजनेसमैन पहले और इंसान बाद में। आजकल ह्यूमन बीइंग ह्यूमन डूइंग हो गया है, पहले उसका पूछते हैं कौन है फिर उससे बात करते हैं। ये लोग तो यहां बिल्ले लगा के चलते हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जो जिंदगी से संबंधित है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो और आसान है, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। जो भी एक्टिविटी कोई करता है, किसी लक्ष्य से करता है ना, कोई सन्यासी बन जाता है, घर छोड़ जाता है, कोई खूब दुनिया में घुस जाता है, कोई जायज तरीके यूज करता है, लेकिन क्यों करते हैं? अगर हम आपसे सिंगल एक क्वेश्चन पूछें, आप एक वर्ड में बताइए, सिर्फ एक वर्ड में सोच साच के, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं, तो कोई उत्तर मिलेगा? कहीं से शुरू कर लीजिए, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे भाई? खुशी। वेरी गुड, खुशी। अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी। तो सभी बिजनेसमैन खुशी चाहते हैं। चलो, और भी कुछ चाहते हैं तो बता दो। खुशी चाहते हैं या कुछ और भी? जरा यहां से कोई रिवाइज कर। शांति, शांति, दोनों ही बहने हैं, खुशी शांति। कोई पुरुष का भी नाम लो। आनंद, वाह वाह, ठीक है। अच्छा, आजकल तो डबल नाम भी होता है, यूनिसेक्स, आनंदमयी माँ है, आनंद। चलो छोड़ो, चलो तीन बातें ही ले लेते हैं। वैसे तो कई प्रेम चाहते होंगे, कई खुशी, शांति और आनंद, बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि ये आप परमानेंटली चाहते हैं या बीच बीच में? हाँ, क्योंकि जब हम कहते हैं चाहते हैं, उस समय नहीं है, फिर आई। तो जब हम कहते हैं चाहते हैं, चलो आपको आज भगवान बहुत खुश है, आप उसके इतने बड़े हाल में आए हैं खर्चा खुर्चा करके, तो वो देने को तैयार है। पर वो पूछ रहा है कि आप परमानेंट चाहते हैं या टेम्परेरी चाहते हैं, नारियल चाहते हैं या टमाटर चाहते हैं? चलो यही बताओ, परमानेंट चाहते हैं? अच्छा जी, जो परमानेंट चाहते हैं, बड़ी सदा के लिए खुशी मिल जाए या शांति मिल जाए या आनंद, तो जरा इतना सा हाथ उठा दीजिए। सर्दियों का मौसम है वैसे भी, अच्छा है, वाह। टेम्परेरी कोई नहीं चाहते, कोई हैं वो सोचते हैं देखें। अब बताइए, कनाडा के अंदर कुछ बच्चे साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक जो होता है फार्मर, उनकी लेबोरेटरी देखने चला गया। उन्होंने कहा, बच्चों क्या कर रहे हो? बोले जी, हम एक ऐसा लिक्विड बना रहे हैं, ऐसा लिक्विड बना रहे हैं जिसमें सब चीजें मेल्ट हो जाएंगी। वो तो था गांव वाला बेचारा फार्मर, कहता है बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, पर इसको रखोगे कहां? तुम वो बना रहे हो जिसमें सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, उसको रखोगे कहां? क्योंकि वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपको परमानेंट खुशी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा सोच समझ से आपने फैसला किया है, उसको रखोगे कहां? हम आपसे पूछ रहे हैं, परमानेंट खुशी को कहां रखोगे? नहीं बांटेंगे तो और बात है, परमानेंटली कहां रखोगे, परमानेंटली कहां बांटोगे? सवाल यह है कि ऐसी जगह कौन सी है जहां रख के बांटोगे? हैं? आत्मा में रखोगे, दिल में रखेंगे? अगर दिल टूट गया तो कहां रखोगे बताओ? दिल का क्या भरोसा है? बहन जी कह रही थी इसका सोने का दिल है, तीन बार डॉक्टर कह चुके आपको ऑपरेशन करूं, मैंने कहा नहीं, तुम सोना निकाल लोगे क्या, है ना? ऐसा गड़बड़ नहीं करना। आप ये बताओ कि उसको रखोगे कहां? परमानेंट बांटने की बात तो बाद की है, पहले तो अपने पास आए। इसलिए अब हमें ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा सेफ डिपॉजिट लॉकर है जहां हम खुशी को रखें और परमानेंट रहे। अब आप देखिए कि रखना चाहता हूं मैं, और मैं मेरी अपनी ही अस्तित्व परमानेंट है या नहीं है, मैं इस दुनिया में कितने साल हूं, अभी मान लो मेरी आयु 80 साल है, कितने साल और उम्मीद रख सकता हूं। आजकल तो लोग जन्मदिन मनाते हैं, एक दीवा और बुझा देते हैं, ये तो आसान है, आगे कितने बचे हैं ये तो नहीं पता ना भाई। तो अब ये बताओ कि कहां रखूं, अगर मैं अपने अंदर रख भी लूं कहीं, तो ये गया तो खुशी भी गई, आप गए जग पर लो, फिर क्या होगा मेरा। चाहता हूं मैं परमानेंट खुशी, और रखने की चीज बेसिक ही मैं टेम्परेरी, कैसे होगा। इसलिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन आखिर ये देखता है, बहुत होशियार होता है, एक तो ये चाहता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाए, मेरा खर्चा बहुत कम आए, मैं विड्रॉ बहुत थोड़ा करूं, री इन्वेस्ट कर दूं, यहां तक इतना कर दूं कि मैं फ्री फोकट में जिंदा रहूं, मेरा री इन्वेस्ट होता जाए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अच्छी बात है, सच है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे पहले हम ये सोचें कि खुशी रहती कहां। चलो भाई, अब आपको पीछे बताया गया था, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आपको कब असर करती है। मान लो आप कार यहां लाए हैं और यहां बैठे हैं, आपकी कार चोरी हो चुकी है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाहर जाके देखना नहीं, आपकी कार वाकई चोरी हो चुकी है, पर आपको कुछ पता नहीं, आप आराम से बैठे हो, खुशी से बैठे हो। जब आपको पता लगेगा, आके कोई कहेगा अरे भाई आपकी कार वहां नहीं है, तो आपके अंदर हलचल चलने में शुरू होगी, है ना। जैसे हमारे पंजाब में जो अखबार दिल्ली में आ जाता है वो परसों शाम को आता है, तो वहां कोई नेता मर चुका होता तो यहां होता आज बीमार है, अगले दिन मरेगा, क्योंकि न्यूज ही ऐसी आती है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी वो आपको हलचल करेगी, तो वो भी कहां तक करेगी। अगर कोई ऐसी कार लाया हुआ इंश्योर करा के, मैं तो चाहता हूं गुम हो तो मुझे नहीं मिले, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ेगा, कहता हो जाने दो। अगर किसी बेचारे ने बहुत इधर उधर से करके खरीदी है लोन भी, उस घबराएगा। तो मतलब कहने का यह हुआ कि आपको दुख और सुख, खुशी या गम, तब आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर रजिस्टर होगा, पहले हो चुका होगा दुनिया में कुछ, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, रिश्तेदार बैठे रहते हैं, जब तक ये कन्फर्म ना हो कि मेरे को कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अब वो रजिस्टर कहाँ होता है, आपके अंदर, आंख में होता है, कान में होता है, कहाँ होता है, ये तो बड़ा आसान सवाल है, हैं? मन में होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपके मन में रजिस्टर होता है, अच्छा, और वाकई जो कुछ भी आपका, जो अपने आप को आप समझते हैं वो आपके मन में ही है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास 10 लाख रुपया लाए होंगे साथ, कोई 5 लाख लाए होंगे, कोई 5,000 लाए होंगे, तो आप जब यहां घूमते हैं तो आप 5 लाख साथ लेकर तो नहीं चलते, 10 लाख साथ लेकर तो नहीं चलते, पर आपके मन में होता है कि मेरे पास 10 लाख है जो मैंने खर्चना है। मान लो किसी मॉल में भी चले जाएं तो सब कस्टमर जा रहे हैं, लेकिन आप उस फीलिंग से जाते हैं, आपके पॉकेट में नहीं है, पर आप समझते हैं कि मैं 10 लाख के हिसाब से खर्चूंगा। इसी प्रकार से मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं किसी से डरता हूं, मुझे कोई फोबिया है, कोई मेरी स्ट्रांग पॉइंट है, कोई वीक पॉइंट है, वो सारी कहां रहती है, आपके मन में, ठीक है। कोई भय है, कोई चिंता है, कोई कुछ भी है। अब सिंपल बात हो गई कि अगर आप अपने मन को ऐसा इंसुलेट कर लें कि उसके अंदर अच्छी खबर तो जाए और खराब खबर ना जाए, या खराब खबर जाए तो बदल के जाए, तो बेड़ा पार है, मन में ही जाना है ना। जैसे आप अपने घर में एक आई लगा के रखते हैं, अब विदेश में जाओ तो घंटी बजानी पड़ती है, पूछता है तो कौन है, तब वो दरवाजा खोलते हैं। तो आप अपने मन में और जगह का बड़ा ध्यान रखते हैं, यदि पेट्रोल ना चल रहा हो, बिजली ना जगी हुई रह जाए, पानी ना बहता हुआ रह जाए। एक बिजनेसमैन तो बहुत महान थे, उनके प्राण ही नहीं निकलते थे। पत्नी ने कहा, पति देव अब प्राण छोड़ दो। कहते नहीं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे करो। उन्होंने सारे कर लिए। कहते अब तो त्याग दो। कहते कि वो मेरा बेटा भी आ गया, वो साथ कमरे वाले कमरे में वो भी आ गया। कहते हाँ बिल्कुल सब देखो। कहते फिर उस कमरे की बत्ती क्यों जग रही? ये भी होता है, उनका बड़ी इकोनॉमी का ख्याल है। तो कहने का भाव ये है कि हम दुनिया में बहुत सारी चीजों से अपने आप को इंसुलेट करते हैं। आप एक घड़ी खरीदते हैं, वाटरप्रूफ, शॉक प्रूफ, एंटी मैग्नेटिक, दिस दैट। कभी आपने अपने मन को चेक किया कि हमने जहां सब कुछ रखा हुआ है तो वो शॉक प्रूफ है, कि जो भी आया जरा सा आपको शॉक लगा गया वो वाटर प्रूफ है, एंटी मैग्नेटिक है, इधर उधर खींच खांच नहीं करता। तो ये आपको करना है, आपके मन की कोई भी स्थिति हो, क्योंकि आप दुनिया की अप्स एंड डाउन्स को नहीं बचा सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब अर्थ को एक आ जाएगा तो हमारे कंट्रोल में है क्या? कुछ शराब पी के आप पर बस चढ़ा रहा है, आपके कंट्रोल में है क्या? हजार चीजें हैं, ऊपर से पाकिस्तान लड़ाई कर दे, आपके कंट्रोल में है। लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है कि उस परिस्थिति में अपनी मोस्ट वैल्यूएबल और नायाब चीज को प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि मेरे ऊपर आंच आए ही ना, आए तो मिनिमम आए। ये हमारा एम है। बिजनेस करो, कुछ करो, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो गया हंसने लग गए, लॉस हो गया नीचे आ गए, तो ये नहीं। तो हम आपको एक सफलता की परिभाषा बता रहे हैं, ए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जो आम परिभाषाओं से हटके है। और वो ये है, ये आध्यात्मिक परिभाषा है कि उस्तति निंदा ऑपोजिट है। आपकी तारीफ कर दे, आप कहेंगे दोबारा बोल मैंने सुना नहीं अच्छी तरह, और आपकी कोई निंदा कर दे आपको लगता है आपके कान में गर्म तेल डाल दिया किसी ने, वहां से भागते हैं। उस्तति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, जो सब में समान रहता है वो सक्सेसफुल है। तो ये आप बिजनेसमैन तो अच्छी तरह अपनी परिभाषाओं को नोट करिए। आपने वैसे अप एंड डाउन देखे होते हैं दुनिया में, बहुत लोगों ने देखे होते हैं। और एक पूर्वज या बुजुर्ग या एक्सपीरियंस्ड पर्सन और दूसरे में फर्क भी ये होता है। बढ़िया बिजनेस कौन सा होता है जिसकी गुडविल बहुत फैली हुई हो, है ना? अकाउंट्स में गुडविल को अलग रखा जाता है, वो गिनती में नहीं आती, पर गुडविल बड़ी चीज है। तो जैसे मान लीजिए एक नया बिजनेस कपल है, वो जाके 10 लाख रुपए का क्रॉकरी सेट ले आते हैं, घर बना रहे हैं, बच्चा आके एक कप तोड़ देता है। अब क्या होता है? तो वो कहते हैं, अरे भाई नालायक, हमने अभी अभी लाया था, चाय भी नहीं पी, तूने कप तोड़ दिया, अपना ही बच्चा है, तो कैसे ट्रीट करते हैं उसको? हो सकता हाथ भी उठा दें। दादा जान साथ के कमरे से निकलते हैं, अरे बच्चे को क्यों मार रहा है, डांट रहा है, तो देखो जी इसने ऐसे ऐसे कर दिया। तो दादा जान की अप्रोच दूसरी होती, कहते छोड़ दे ना, बच्चा है छोड़ दे। अब देखिए फर्क क्या हुआ एक्सपीरियंस का। तो द नेट गेन दैट ए पर्सन हैज फ्रॉम लाइफ, वेदर आउट ऑफ बिजनेस और एनी अदर डीलिंग्स, इज एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस उसको उस प्रकार की गलती दोबारा करने से बचाता है। गलती करना तो अंत तक चलता है, लेकिन गलती की क्वालिटी रिफाइन होती जाती है। एक गलती को रिपीट करना गलती है, जो हमने सबक सीखा। तो इसलिए एक तो ये हो गई परिभाषा। अब सवाल ये है, क्या क्या दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें घाटा हो ही ना? विन विन सिचुएशन तो आपने सुनी है, जिसमें घाटा हो ही ना। आप सोचिए, कोई वो बिजनेस कोई करता है और जिसमें आपको कम से कम मेहनत कर, नाम मात्र की मेहनत करनी पड़े, ऑटोमेटिकली चलता रहे, सब काम उसका स्वचलित हो, आप आराम से बैठे उसकी रॉयल्टी खाते रहे और इतनी रॉयल्टी हो कि बस आपको, जिसको कहते हैं ना, इस आदमी के संस्कार बड़े रॉयल हैं, ये कभी नीचे नहीं देखता, मिट्टी के ऊपर चीज नहीं देखता, धरती पर पांव नहीं रखता। आजकल रेड कारपेट बिछा देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए तो ना रखे। अब देखिए वो क्या बिजनेस हो सकता। तो आप जानते हैं कि बिजनेस में सबसे बड़ी सफलता की चीज होती है कि उसमें वेस्टेज ना हो। आप सब जानते हैं कि अगर टाइम का वेस्टेज हो गया, किसी भी चीज का हो गया, रिसोर्सेज का हो गया, माल आपका वक्त पे पहुंचे, कुछ भी हो गया, तो वेस्टेज का लॉस सबसे बड़ा लॉस होता। तो एफिशिएंसी ये कहती है कि वेस्टेज मिनिमम हो, अव्वल तो हो ही ना। ठीक है, अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। हैं हम समझदार, हम खूब मेहनत करके रिजल्ट दिखाते हैं, एक जैसे जैसे दूसरा ऐसे हम हैं। पहली बात तो हमें ये देखना है कि बिजनेस में रिसोर्स क्या है और रिसोर्स से बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो किसके काम का है। तो आज हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि रिसोर्स को ही बिजनेस का एक प्रॉफिट या लॉस मानना शुरू कर दिया। जैसे कोई अहमदाबाद की सड़क पे खड़ा हो जाए तो कह मैं अहमदाबाद, बस यहाँ यही अहमदाबाद है, आगे अहमदाबाद ही अहमदाबाद है, वो तो एक रास्ता है, रास्ते पहले आते हैं, मंजिल बाद में आती है। तो हम रिसोर्स में आप देखिए किस किस को गिनते हैं। एक तो नॉर्मल गिनते हैं जी, रॉ मटेरियल फलाना टिकाना, मशीनरी बनी हुई मार्केट, लेकिन हमें ये देखना है कि हम क्या हैं। जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये भी एक रिसोर्स है या इसको रिसीव करने वाला है, ऑब्जेक्ट है ये। तो आप देखेंगे गलती से हमने ये मानना शुरू कर दिया है कि हमने मकान बनाया, पैसा कमाया, ये किया वो किया, ये सब मेरे लिए है और मैं इसका ओनर हूँ और मेरे इस रिसोर्स को यूज करके मैं अपने आप को अपलिफ्ट और एलिवेट कर रहा हूँ। आज हम यही कर रहे हैं और रिजल्ट क्या है कि हम अपने आप से इतने दुखी नहीं हैं जितने हमें दूसरे हमें दुखी कर जाते हैं। पड़ोसी के घर बहुत बड़ी कार आ गई शाम को, नई बिल्कुल, हम खाना पीना छोड़ के सारे बाल बच्चे देखने लगे, भाई कहाँ से आ गई कार इसके पास है, उसके लिए काफी अपना अनुमान लगाएंगे। अच्छा, और उदास भी हो जाएंगे कि हम नई लाए थे, ये तो उससे भी बढ़िया आ गई, तुमने क्या लेना है भाई। अच्छा, अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ गई, आपको बहुत खुशी कि भाई अरे अब पता लगा कार कहाँ से लाया है। अब देखिए कि इससे ना हमारा कोई वास्ता, ना लेना ना देना, वो जाने उसका काम जाने। तो ये प्रॉब्लम हमारे को परमानेंट है। अब आप एक एक्टर देखिए, हम भी एक्टर हैं, इस दुनिया में आए हैं, ये हमारा कॉस्ट्यूम है, ऐसा तो नहीं कि हम ये हैं। एक्टर को लोग राजा सिकंदर बनाते हैं तो राजा की वर्दी पहना देते हैं, कोई पहरेदार बनाते हैं तो उसकी वर्दी पहना देते हैं और उसको अच्छी तरह पता है कि मैं ये ड्यूटी कर रहा हूं, ना तो मैं सिकंदर हूं ना मैं पहरेदार हूं, मैं तो एक्टर हूं, एक्टिंग करके चला जाऊंगा। अब किसी एक्टर का मेमोरी लॉस हो जाए, यदि मैं तो सिकंदर ही हूं, अब उसको कहें भैया तेरा रोल पूरा हुआ तो जा, वो रोना शुरू कर देगा, अरे मैं सिकंदर, मुझे लूट लिया, मेरी राजधानी छीन रहे हो, मत उतारो मेरी वर्दी। आप क्या कहेंगे? और हम क्या करते हैं? हम भी यही करते हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि मेरा ये लाइफ स्पैन लिमिटेड है कि नहीं है, या हमने परमानेंट यहां रहना है? हम कहते भी है जिंदगी एक मुसाफरी है। अच्छा, अब मुसाफरी का मतलब ही क्या होता है कि यहां से वहां तक जाना है फिर उतरना है। अच्छा, अब देखिए कि इसको हम मैं समझ लेते हैं कि मैं मुसाफिर नहीं हूं, मैं सिकंदर ही हूं, और उसका हमें दुख होता है। जब हम जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वही जवान रहें जो पहले थे, पाउडर मलेंगे, बाल रंगाएंगे, 100 काम पे, कितना दुख भी तुम हो नहीं बनने। वो भाई भी कह रहा था, बी योर सेल्फ बट यू आर, उसकी बजाय वी वांट टू बी बट वी वर, तो कहां तक चलेगा? टाइम फैक्टर तो चलेगा। इसलिए अगर हम इस बात को गौर से सोचें, जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, शरीर बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इंटेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैन इज एन आइलैंड, हम अकेले बैठ कर तो जी नहीं सकते, और बिजनेसमैन को ये कुदरती समझो वरदान है, वो बिजी रहते हैं, बिजनेसमैन वांट हु इज बिजी, और जो बिजी नहीं है, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, उनका दिमाग तो वैसे ही फट जाएगा, बैठे बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। अब हमने देखना है बिजी इन व्हाट, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि ये पहले तो आप ये सोचिए, जो हमें मिला हुआ है ये हमने अक्वायर किया है या हमें गिवन है? जो बॉडी हमें मिली वो हमने खुद ली या हमें मिली? जो पेरेंट्स हमें मिले वो हमने खुद सिलेक्ट किए या हमें मिले? और आज भी जो कुछ हमारे पास है ये हमारे कंट्रोल में है? कैन एनी पर्सन एश्योर कि मैं आज से 10 साल बाद जिंदा रहूंगा? नहीं। तो जब गिवन चीज है और उसको हमें यूज करना है तो हम उसके ट्रस्टी हो गए कि नहीं हो गए? अब उस ट्रस्टी को मैं गलत समझ लूं कि मैं और मेरा, द होल ट्रबल स्टार्ट्स, क्योंकि उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होता, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अच्छा हो तो भी इन्वॉल्वमेंट, उसको छोड़ना नहीं, खराब हो तो भी इन्वॉल्वमेंट, क्यों आ गया, अप डाउन तो होता ही रहेगा, उस सारे को हम ओन कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति जिस चीज को ओन कर लेता है फिर उसका तन डोले मन डोले डामा डोल होता ही रहेगा। तो इसलिए जिंदगी को ट्रस्टी बन के जीना, ये तो पक्की बात है, यहां हमें मिला है, कुछ समय हम रहेंगे, कुछ दिन में आते हंस रो के जाते, वो करना है या हमें फंसना है? तो आप अपने दिल पर हाथ रख के देख लीजिए कि हम अपने आप को भी इस ड्रामा के नाटक में एक एक्टर मानते हैं या सचमुच ही मानते कि मैं वो हूं जो मैं हूं? और सचमुच मानने से क्या होगा, अगर आपका रोल घटिया है तो आप समझेंगे ये रोल बढ़िया है तो आप उदास हो गए, अगर आपका रोल बढ़िया है आप समझेंगे घटिया, आप ईगो में आ गए तो भी मुसीबत है। एक हीरो एक्टर क्या वो सदा राजा ही बनता है इसलिए हीरो है, या हीरो एक्टर वो है जो कभी राजा भी बनता है, कभी डॉक्टर भी बनता है, कभी पेशेंट भी बनता है, कभी कैदी भी बनता है, कभी जेलर भी बनता है, कभी कुली भी बनता है? आपका क्या ख्याल है? हीरो एक्टर को जो तनख्वाह मिलती है वो उसके राजा बनने पर ज्यादा अमाउंट मिलता है और कुली बनने पर कम मिलता है या बराबर मिलता है? बताइए क्या ख्याल है? बराबर मिलता है। अच्छा, परफॉर्मेंस पर मिलता है, और उसकी जो तारीफ होती है, ताली बजती है, वो उसकी ताली के राजा बनने पर ज्यादा बजती है और कुली बनने पर कम बजती है या बराबर बजती है? अगर 4 घंटे का एक्टर ये जानता है और अपने आप को अलग करके रखता है, उसको पता है मेरा घर तो कहीं और है, मेरी लिविंग, मेरा सब अलग जीवन है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसमें एक वजह है कि वो अपने आप को डिटैच रखता है और उसको अपने घर का पता रहता है कि यहां से जाके मेरा जुहू बीच पर मकान है, मैं वहां जा रहा हूं, और हमको पता नहीं है, हम सोचते यही है। इसके बाद भाई गए, आप मरे, पता नहीं क्या हो गया, आगे डार्क टनल है, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ पैसा तो आपको पता है इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और कोई भी इंग्रेडिएंट किसी चीज का ज्यादा हो जाए तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, वो आपको नुकसान करता है। मान लो एक आदमी ओवरवेट हो गया, अब ओवरवेट हो गया तो कुली बन गया ना, कि हर वक्त 40 किलो वजन साथ लेके चलो। अच्छा, मुसीबत, उसको बीमारियां भी ज्यादा आती हैं, आपको पता है इन दिस वर्ल्ड मोर पीपल डाई ऑफ ओवर ईटिंग देन अंडर ईटिंग, ये तो स्टेटिस्टिक्स है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा मान लीजिए मैं सारे माउंट आबू का भोजन खरीद सकता हूँ, पैसा है मेरे पास, उसमें से इंजेस्ट कितना कर सकता हूँ और डाइजेस्ट कितना कर सकता हूँ, मेरी लिमिट तो आ गई। खरीद के क्या करूंगा? पहले तो खाऊं फिर उसको हजम करूं। इसलिए देर इज ए नेचुरल लिमिटेशन इन द होल सिस्टम। अगर हम उस सिस्टम को रियलाइज करके जितना जरूरी है उतना ही करेंगे, आराम में भी रहेंगे, सुख भी पाएंगे, और फालतू केयर टेकर बन के पैसे को संभालते रहो, हैं पहले टैक्स चोरी करके बनाओ, फिर उसको छुपाओ, फिर बच्चे ले जाते हैं, जवाई ले जाते हैं, रोते रहो आपके सामने सामने लूट रहे हैं, मजबूर होके पड़े हो। इसलिए लाइफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता, और वो आवश्यकता जो है मैं आपको तीन चार फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जो हमने सीखे हैं वो आपके आगे पेश करता हूँ। आपको अच्छे लगे, आपके काम के हों तो स्वीकार कीजिए। पहली बात यह है कि जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, वी डू नॉट ओन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू कैन नॉट ओन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये एक धोखा है कि मैं इस चीज का मालिक हूं, जब मैं अपने तन का ही मालिक नहीं हूं, मुझे अपनी अगली श्वास का ही भरोसा नहीं है। ये मैंने लिया नहीं अपनी मर्जी से, मैं छोड़ भी नहीं सकता अपनी मर्जी से, तो मैं मालिक कैसे हो गया? तो दीज थिंग्स आर गिवन टू मी। तो ये जो हम कागज लेके आ जाते हैं कि ये मैंने मकान बनाया, ये इसकी रजिस्ट्री है, ये मेरी ओनरशिप है, ये पीस ऑफ पेपर है, पड़ा रहे, कल हम शरीर छोड़ जाए तो पेपर पर मेरे बच्चे लड़ेंगे, ये भी मेरा दे दे मेरा दे। आजकल जमाना ऐसा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। बड़े हो जाते हैं तो माँ जाती तो कहते हैं नहीं, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। ये तो हम जानते हैं आजकल रोज चल रहा है। इसलिए बेसिकली इंडिविजुअल इज ए यूनिट, हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना कि आपको कोई फायदा कर जाएगा या आप किसी का कर जाएंगे या आपका। ये सिस्टम इस तरह का है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज यू कैन नॉट ओन रियली एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन ओनली यूज इट। अब कई लोग इसको नहीं जानते तो इकट्ठा करते रहते हैं, मर जाते हैं, बाद में निकलता रहे इस सब्जी वाले के पास 6 लाख रुपया निकला, मैले कपड़े पहनता था, उसको लॉ नहीं पता था। सेकेंड इज Nothing in this world exists for itself. इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना। Everything is meant for others. आपने वैसे वो मेड फॉर ईच अदर के विज्ञापन देखे होंगे, वो तो सिगरेटों के हैं, लेकिन देखिए ये जो मैग्नीफायर, ये एम्पलीफायर है, ये अपने लिए नहीं बना है, ये कुछ नहीं कर सकता। आप इसके 1000 पीस ला के गोडाउन में रख दीजिए, इट हैज नो वैल्यू। जब दूसरा इसको यूज करेगा तब इसकी वर्थ है। यहां 10,000 कुर्सियां लगी हुई हैं, बाय इटसेल्फ चेयर्स हैव नो वैल्यू। जब तक उस चेयर पर कोई बैठेगा तब उस चेयर की वैल्यू बनेगी, कहां रखी जाती, कौन उस पर बैठता है। एक बंगला आप बना लीजिए, आपको पता है किसी बंगले में 100 साल कोई ना रहे उसको कौन सा बंगला कहते हैं, आपको पता है ना? तो इसलिए बंगला तो रहने के लिए होता है, उसकी यूटिलिटी तब है जब कोई उसमें रहे। हर चीज को देख लीजिए। तो हमारे यहां तो कहावत है कि पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं, हम सुनते तो हैं कहावत। अब संतरे को कहो तो पड़ा है नागपुर में उगा हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है, किस काम का, जब तक उसको खाए ना, है ना? इसलिए ईच थिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर, ये भी हमें याद रखना चाहिए। हम अकेले इस दुनिया में नहीं जी सकते। लेकिन अब तीसरा सवाल ये है कि जैसे आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम क्या करते हैं, वी आर एक्यूमुलेटिंग रिसोर्सेस, ये भी ज्यादा हो जाए, ये भी ज्यादा हो जाए, ज्यादा है तो और ज्यादा हो जाए, कोई हर्ज नहीं, और ज्यादा हो जाए, अच्छा, बट दोज आर ओनली रिसोर्सेस, जिसने वो यूज करनी है वही नहीं रहेगा एक दिन, तो रिसोर्सेज किस काम की, आप उतनी इकट्ठी करिए, उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, आपकी रिसोर्सेज अगले जन्मों तक भी इन्वेस्ट हो सकती हैं, लेकिन ऐसे ना करिए। कहते हैं एक बॉम्बे में बहुत बड़े सेठ थे, बड़े बड़े उसके पुरम थे, ग्राम थे, फैक्ट्रियां थी, एक महात्मा को ले आए खाना खाने, भोजन पर ले आते हैं, आए महात्मा जी बोले जरा पीछे चलिए, ले गए उनको बैक साइड में, वो जहां धुआं निकल रहा है वो भी मेरी फैक्ट्री की चिमनी है, वो वहां हो रहा है ये सारा, तो महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे, आ गए तो वापस आए तो उनकी टेबल पे ग्लोब लगा हुआ था, तो उसने कहा महात्मा जी ने, बच्चा यहाँ भारत कहाँ है, तो उसने दिखाया ये है जी छोटा सा, यहाँ बॉम्बे कहाँ है, तो एक बिंदी नजर आई, बोले इसमें तेरा घर कहाँ है, तो वो महात्मा जी वो समझ गया कि मैं खामखा में, अरे दुनिया की गैलेक्सीज देखो कहाँ कहाँ की दुनिया, हम यहाँ हैं, हम किस बात में वो कर रहे हैं, सिकंदर ने भी अपने हाथ बाहर निकाल दिए कि देखो सारी दुनिया फतेह कर रहा था, मैं कुछ नहीं ले जा रहा, कि क्या सबक सीखा हमने उससे, द ओनली लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नो लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, अपने हाथ जलाए बगैर तो हम समझते ही नहीं, सीधी बात है, चलो जलाइए, अब देखा आपने तो एक, तो तीसरी बात ये हो गई, और इसका प्रूफ क्या है कि मेयर एक्यूमुलेशन ऑफ मेटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग, जितनी संसारिक चीजें इकट्ठी कर लो, उसका आपकी खुशी के साथ, आपकी शांति के साथ, आपके आनंद के साथ कोई रेशो पर पोर्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, आप देख लीजिए, अगर ऐसा होता तो जिसके पास वो अनुपात में जो चीज ज्यादा होती उतना खुश नजर आता। बॉम्बे के एक स्लम में सुबह सुबह कोई जर्मन के टीवी क्रू दो बच्चों की फोटो ले रहे थे, वो बच्चे बाहर खड़े थे, उलझे हुए बाल, मैल से भरा हुआ शरीर, फटे हुए कपड़े वो ले रहे थे, तो एक देशभक्त आ गया, उसने कहा क्या करता है, हमारे देश की गरीबी दिखानी करता है, वहां क्या कर रहा है, उसका कैमरा छीन लिया, बोला नहीं जी हम तो ये दिखाना चाहते हैं इनके पास कुछ नहीं फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं, हमारे देश में तो कोई मुस्कुराता ही नहीं, सब भागे 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 फिरते हैं, ये क्या चीज है, डिफरेंस हुआ कि नहीं, कुछ हुआ। इसलिए हमें अपने वोकेशन को, अपने प्रोफेशन को, जो भी हम करते हैं इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, लेकिन उसको अपने वेल बीइंग से अलग रखना चाहिए। अब आप देखिए इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो गुड हेल्थ चाहिए, उसके बाद लॉन्ग लाइफ चाहिए, फैमिली वेल बीइंग चाहिए, घर में भी सब ठीक ठाक हो, पड़ोस में भी सब ठीक ठाक हो, उसके बाद धन चाहिए, साधन चाहिए, उसके बाद खुशी आती है। तो लोग कहते हैं हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और फिर ये भी कहते हैं इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट कहते हैं। एक्चुअली हैप्पीनेस ही हेल्थ है, कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुराक खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, हैप्पीनेस ही हेल्थ है, हैप्पीनेस ही वेल्थ है, खुशी जैसा खजाना नहीं है? तो हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं कि पहले तो हमारी हेल्थ ठीक हो, बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी, हर एरिया में कितने केमिस्ट शॉप हैं, कितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, कुछ ना चार महीने हेल्थ बनाओगे एक नजला आया सारी साफ, जैसे लूडो होती है कि नहीं स्नेक एंड लैडर्स की, आप कितनी मेहनत कर लो फिर नीचे आ जाओगे। इसलिए ये प्रोसेस हम बहुत देर से ट्राई किया है, तो एक्चुअली हमें और डीप जाके देखना चाहिए कि वेस्टेज कहाँ, आपके पास रिसोर्सेज हैं भी उसको यूज कौन करता है, आपका मन। अब आपके पास धन है, अगर आपके मन में थोड़ा सा बिगाड़ आ जाए तो धन किधर जाएगा, गलत रास्ते जाएगा कितना भी हो। अच्छा आपके पास टैलेंट है, बुद्धि है, अगर आपके मन में थोड़ा बिगाड़ आ जाए, मैं आ जाए, तो आप अपने रिलेशन को तोड़ फोड़ के अपनी बड़ी बड़ी फर्मों के टुकड़े कर लोगे, इज्जत का भी सवाल नहीं करोगे, मैं इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया, फिर आपके पोते आपस में अलग होते जाएंगे, तो वो तो नहीं रहा यूनिट फैमिली का। तो असली चीज दुनिया के अंदर जो एक वैल्यू है, जो सब वैल्यूज को डिटरमिन करती है, उसका नाम है लव। इस दुनिया में बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो सीमेंटिंग का काम करती है, वेयर देयर इज लव देयर इज एवरीथिंग, वेयर देयर इज नो लव देयर इज नथिंग, बाकी सब कुछ हो। लेकिन ये लव भी बिगड़ा हुआ, आजकल हर चीज के डुप्लीकेट हैं, ट्रिप्लीकेट हैं। चाइना में जाओ, वही चीज 1000 रुपए की, वही 500 रुपए की, वही 40 रुपए की, देखने में एक जैसी। तो लव कौन सा है? एक होता है लव, एक होता है लव फॉर मनी, लव फॉर पोजीशन, लव फॉर स्टेटस। वो लव के साथ डेफिनेशन लग जाती है। लव देने के लिए होता है। आज का लोग लव मांगते हैं तो उल्टा हुआ हुआ, ये परवर्टेड लव है, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद सर्टेन थिंग्स एंड पीपल। तो वो जो लव है वो है सीमेंटिंग फोर्स। और दूसरी ट्रुथ, अगर लव आपका ट्रुथ पर बेस्ड नहीं है तो लव अंधा हो जाएगा, आपको आज भी धोखा दिलवाएगा, कल भी इमोशनली आप हो जाएंगे, बाद में कहेंगे मेरी बैग मेरे छुरा घोंप दिया पीस में। तो ट्रूथ एंड लव आर द टू वैल्यूज ऑन विच यू कैन बिल्ड ए वेरी स्ट्रांग लाइफ। और ये दोनों इतनी इम्पोर्टेंट है कि इनका गॉड से इक्वेट किया जाता है। हालांकि गॉड बहुत कुछ है, गॉड मर्सीफुल है, गॉड काइंड है, गॉड कंपैशनेट है, सब है, लेकिन ये नहीं कभी कहा जाएगा कंपैशन इज गॉड, मर्सी इज गॉड, नहीं। ट्रूथ इज गॉड, आपने कई जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा, ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड, इसके अलावा किसी वैल्यू के लिए नहीं लिखा होगा इट इज गॉड। हालांकि गॉड इज मच मोर देन लव एंड ट्रूथ, लेकिन ये इटर्नल वैल्यूज हैं। अब आपको देखना है कि भाई हम कितने सच्चे हैं। आप कहेंगे हम झूठे हैं क्या है? वैसे तो कई लोग आजकल कह देते हैं हम सब चोर हैं, हम सब चोर हैं कहते हैं, तो कुछ सोच के ही कहते होंगे हैं। और चोर अपने आप को चोर कह दे तो लोग समझते हैं चोर नहीं है। अच्छा देखिए, पहली बात, ट्रूथ की डेफिनेशन है ट्रूथ इज एवरलास्टिंग, ट्रूथ इज एटर्नल, ट्रूथ कैन नॉट बी चेंज, ट्रूथ वाज, ट्रूथ इज एंड ट्रूथ विल बी, इट इज अनचेंजेबल, इसको कहते हैं ट्रूथ। अब आ जाइए सामने, चलो इन भाई साहब जो पहले नंबर में बैठे हैं, आपको जरा खड़े होना पड़ेगा, ये दूसरे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम सब अपने पर लगे। आपका नाम, आपकी एज 45, चलो इतना ही पूछते हैं जरूरी। अब आप सब अपना अपना नाम और अपने अपनी एज तो जानते ही हैं, ये बताइए कि 46 इयर्स बिफोर टुडे यू हैड दिस नेम एंड दिस बॉडी, यस और नो? अभी आप सब बहन भाई अपने से पूछो, जस्ट एड 1 ईयर टू योर लाइफ टूडेज एज एंड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन कि उस इस नाम और इस रूप में और जो भी है आप थे या नहीं थे, क्या आंसर है, क्या आंसर है, यस या नो? अब बैठ जाए, नो। अच्छा, अब जो चीज नहीं थी और नहीं रहेगी, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ आप उसको ट्रूथ कह सकते हैं? ऐसा नहीं कि ये कल्पना है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ तो नहीं है ना, क्या ख्याल है आपका? 46 साल पहले ये बॉडी नहीं थी, कुछ तो था, और अभी कोई सम मोर इयर्स हैंस ये नहीं रहेगी, कुछ तो रहेगा या नहीं रहेगा? और एक बिजनेसमैन आगा पीछा सोचने वाला बिजनेसमैन ही फार साइटेड होता है, जो आज का आज करे और कल का पता नहीं वो क्या बिजनेसमैन ही करेगा। इसलिए वी हैव डेविएटेड फ्रॉम द ट्रूथ एंड स्टार्टेड कंसिडरिंग समथिंग विच इज टेम्परेरी, विच इज ट्रांसियंट, विच इज मॉर्टल, विच इज पेरिशेबल एज बी। तो आप उस नैया में डाल रहे हैं अपना सबको, जिसमें आज भी डूबना कल भी डूबना, खुशी कहां से आएगी आपको? है टेम्परेरी खुशी के मैं अपनी नाव में फूल भी रख लिए, खाना भी रख लिया, आगे क्या होना है? इसलिए दैट इज वन फंडामेंटल विच इंडियन लोगों को, जो स्पिरिचुअल हमारी ब्लड में है, हम लोगों को इसका खास ध्यान रखना चाहिए। तभी आप एक और तरह की टर्मिनल ब्लिस रख के एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें घाटा ही नहीं घाटा और जिसमें वृद्धि इतनी अनफैदमेबल है, इतनी जबरदस्त है कि आप अपने जन्म जन्मांतर का यहां कल्याण कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं इसमें आ गए। अच्छा, आगे चलिए। अब आ गया लव। अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम ये नहीं है तो फिर हम क्या है, ठीक है कि नहीं? अगर ये रॉन्ग नंबर है तो राइट नंबर क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं? अब आप देखिए, हम दो वर्ड डेली यूज करते हैं, आई एंड माई, ठीक है? मैं और मेरा सबसे ज्यादा यूज करते हैं। है झगड़ा भी मैं मेरे का ही, मैं मेरा तू तेरा, झगड़ा शुरू। अच्छा, अब ये हाथ है, इसको आप आई हैंड कहेंगे या माई हैंड? बोलिए, माई हैंड। ये शर्ट को आई शर्ट कहेंगे या माई शर्ट? पूरे बाजू को माई आर्म कहेंगे या आई आर्म? माई, सोचते जाना। सारी बॉडी को माई बॉडी कहेंगे या आई बॉडी? क्या कहेंगे? तो आई कहाँ है जनाब? तो कहने का भाव ये है कि हमारी फर्स्ट फंडामेंटल मिस्टेक ये है कि जो बॉडी है हमारी, जो हमारा रिसोर्स है, जो यहां हमें मिला है क्योंकि हम फंक्शन कर सकें, आत्मा बॉडी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, हमने अपने आप को वो मान लिया है। यानी माई को आई मानकर सारी जिंदगी उस माई की बेटरमेंट के लिए लगाते हैं। हमारी एजुकेशनल डिग्रीज, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा जो कुछ भी है संबंध, सब माई के नाम से ही रजिस्टर्ड है। और माई चली जाती तो लोग कहते हैं तो बेचारा चला गया, चल बसा, स्वर्गवास हो गया। तो हम वो माई नहीं है, अपनी आई को रियलाइज करके हमने चलना है। तो आई, गीता के भगवान ने यही सिखाया था कि यू आर सोल, तुम इमॉर्टल हो, एटर्नल हो, अनादि हो, अविनाशी हो। और ये तो हुई इसकी वैसे क्वालिफिकेशन, जितनी चीजें आपने बोली हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, ये सोल में है, बॉडी में नहीं है। आप देख लीजिए, अल्टीमेटली जितना भी आप पापड़ बेल के आते हैं उससे जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, चाहे धन इकट्ठा करें या नाम मान शान इकट्ठा करें, कोई तारीफ आपकी हो, वो सारी सोल को ही एक्सपीरियंस होती, बॉडी को नहीं। डेड बॉडी की कोई आके तारीफ कर दे, डेड बॉडी को तो कोई गले मिलो, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट। और इसकी वैल्यू भी जब तक सोल अंदर है, सोल सेब खाएगी अंदर होगी तो बॉडी को लगेगा, डेड बॉडी को आप सेब का जूस पिला दो कोई फायदा नहीं। तो हमें ये डिस्टिंक्शन जरूर याद रखनी चाहिए, दिस इज स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल, कि मैं आत्मा हूं। अब आत्मा में ही सारी वैल्यूज हैं, आत्मा में ही सारे गुण हैं, और अवगुण भी आत्मा में ही है। गुस्सा किसके अंदर है? ईगो किसके अंदर है? ग्रीड किसके अंदर है? सेक्स लस्ट किसके अंदर है? अटैचमेंट आत्मा के अंदर है। तो आत्मा अपने आप को जब बॉडी मान के इन चीजों के अंदर फंस जाती है तो इंडिपेंडेंट या फ्री, स्वतंत्र नहीं हो सकती, और किसी चीज की गुलाम नहीं है, अपनी ही आदतों की गुलाम है। अब किसी को लालच है, मकान में आग लग गई, जान बचा के बाहर आ जाएगा, फिर सोचेगा अरे मैं अपना गोल्ड ले आऊं, जाएगा मर जाएगा। क्योंकि उस अटैचमेंट ज्यादा होगी लाइफ से भी ज्यादा। इसी तरह से ईगो में आकर के लोग देश जला देते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, जेलसियां पैदा, तो ये सारी चीजें आपके सारे सुख को ले जाती हैं। तो इसलिए पहली फंडामेंटल थिंकिंग है मैं आत्मा हूं, और आत्मा इस उसको बॉडीज मिलती रहती हैं। हमारी लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है कि जिस स्टेज पे हम आज हैं उससे अपनी आत्मा को बेटर बनाएं, उसके संस्कार बेटर करें, उसके मन को शुद्ध करें, उसकी बुद्धि को क्लीन करें, ताकि वो मेरा परमानेंट रहेगा, अभी भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। उसकी चीजों को डिस्टर्ब करके, मान लो आपने ईमानदारी बेच दी, आपने अपना रिश्तेदारी को तलाक दे दिया, टेम्परेरी आपको कुछ मिल जाएगा लेकिन वो आपका रहेगा नहीं, क्योंकि रॉन्ग तरीके से लिया हुआ है और आगे के लिए आप डिप्राइव हो गए। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सोल इज द एम ऑफ अवर लाइफ और बिजनेस। सेकेंडली, हर व्यक्ति कहता है मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। तो एक होता है, आप जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखनी हो आपने अपनी, तो जैसे डॉक्टर आजकल ब्लड का एक ड्रॉप लेकर आपको सब बता देते हैं कि आपका बाकी ब्लड कैसा है, माउंट आबू में सबसे साफ और शुद्ध ब्लड है या उसमें कोई वायरस है। अगर डॉक्टर आपको कह रहे भी आपका ब्लड तो सबसे बड़ी, आज तक ऐसा ब्लड आया ही नहीं, तो आप सीना तान के यहीं से चलना शुरू कर देंगे, तो कुछ खाया नहीं पिया नहीं है, अरे मेरा ब्लड। और अगर उसने कह दिया कुछ थोड़ा गड़बड़ है तो आप सिर झुका के भारी पांव से चलेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने जीवन को टेस्ट करना हो, जस्ट पिक अप योर वन थॉट, अपनी एक थॉट को लीजिए, उसको चेक करिए, उस थॉट के अंदर प्रेम कितना है, कंपैशन कितना है, जो आप आनंद कितना है, शांति कितनी है, दूसरों के लिए शुभ भावना कितनी है कि नहीं है, जेलसी कितनी है, शक्ति कितनी है, ये सारी चीजें वो आपको डिटरमिन करेंगी कि आप क्या कर सकते हैं। कोई परिस्थिति आ जाए आप झुक जाएंगे, दब जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फेस करेंगे। तो इस प्रकार से हमें मिनिमम अपने जीवन का जो डिनोमिनेटर है, एक विचार है, थॉट जो मन में आते रहते हैं, वहां से कंट्रोल करना शुरू करिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो है वो तो है, आपको पता है, हमें इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए तीन फार्मूले हैं, हम सिर्फ आपको फार्मूले बता सकते हैं। उसको चलने के लिए आपको आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, परमात्मा से याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो वो फार्मूले बड़े पक्के हैं। पहली बात तो आपके आजकल के बिजनेस से उल्टा फार्मूला है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे जो आप पा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। आज तक हम ये सुनते रहे हैं कि लेना में फायदा है, देने में नुकसान है, सुनते रहे ना। लेने में बिजनेस किस लिए हम करते हैं, कुछ प्रॉफिट, थोड़ा या ज्यादा। अच्छा, अब भगवान भी बिजनेस करता है, और वो ऐसा बिजनेस करता है उसमें घाटा है ही नहीं, और वही बिजनेस हम चाहते हैं हम सब करें, उसके बच्चे हैं। भगवान का जितना बिजनेस है वो देने से चलता है। देखो वंडरफुल बात, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमें यही पढ़ाया जाता था, जो आए वो गेन है, जो जाए वो लॉस है। लेकिन है नहीं ऐसा। जैसे किसी गांव के आदमी को कहो कि सूरज धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूरज के गिर्द घूमती है, वो तो बेचारा यही कहेगा सूरज घूमता है, सुबह यहां था, दोपहर को यहां है, शाम मैं तो वहीं खड़ा हूं। पर ज्योग्राफी उल्टा बताती है, जो पढ़े लिखे वो कहेंगे ऐसा नहीं है। तो स्पिरिचुअल शिक्षा ये सिखाती है कि देने का बिजनेस करो। वैसे हम कहते हैं गिव लव टू गेट लव, गिव रिस्पेक्ट टू गेट, तो चार चार बातों के लिए कहते हैं, लेकिन नहीं, टोटली आप यहां बैठे बैठे देख लीजिए दुनिया की हर चीज ले रही है या दे रही है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो क्या कर रही है, कुछ ले रही है या दे रही है, क्या ख्याल है? इसीलिए आप कुर्सियां बनवाते हैं, ये ट्यूब लाइट है, ये अपने आप को रोशनी दे रही है या आपसे कुछ ले रही है या कुछ दे रही है? दे रही है, इसलिए लोग ट्यूब लाइट लगवाते हैं। ये सारा जो हॉल है ये क्या कर रहा है? आपसे कुछ ले रहा है या आपको कुछ दे रहा है? शेल्टर दे रहा है, इसलिए आप हॉल बनवाते हैं। बाहर आ जाइए, आम लगे हुए हैं पेड़ पर, पेड़ क्या कर रहा है? आपसे कुछ ले रहा है या आम दे रहा है? दे रहा है। सूर्य देवता की तरफ चले जाइए, वो गर्मी और रोशनी ले रहे हैं या दे रहे हैं? भगवान के लिए तो कहते हैं देने वाला। अब ये सब दे रहे हैं और हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग तो इनको देवता कह के भी पूछते हैं, क्योंकि देने वाले के साथ किसी का कोई क्लैश नहीं है। जो इसको शक पड़ेगा इसका कोई हिडन एजेंडा है, देयर इज सम कैच, आप सावधान हो जाए। अब बताइए हमारे पूर्वजों का क्या नाम था, जिनके हम वंशज हैं, राम सीता लक्ष्मी नारायण, नाम है कि नहीं, उनका क्या नाम है, उनको क्या कहते हैं, लेवी देवता या देवी देवता? बताओ, देवी देवता। उसका मतलब क्या होता है देवता का? देने वाला है। अब वो ये फार्मूला अपनाते थे, आज उनकी मूर्तियों के आगे भी आप पैसे चढ़ाए जाते हैं, वो मांगते नहीं ना, टैक्स लगाते हैं, गरीब भी आदमी खुश हो जाता है। अच्छा, आज हम बड़े होशियार हैं, फिर भी लेने की इच्छा फिर भी कायम रहती है कि नहीं रहती है? आपने किसी को 1000 का नोट देना है, आपका हाथ कैसे होगा, करके दिखाइए। आप किसी को 1000 दे रहे हैं, दिखाइए, आप असली थोड़ी दे रहे हैं, करके तो दिखा दो। क्या हो, कैसा होगा हाथ? ऊपर होगा? और 10000 ले रहे हैं तो हाथ कैसा होगा, हो गया नीचे? भाई ये फार्मूला ऑफ लाइफ है। अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, अपने स्वमान में रहना है, आप अपने बेफिक्र बादशाह रहना है, तो आप ये फार्मूला अपनाइए, मुझे किसी से लेने का सपने में भी ख्याल नहीं रखना। आप अभी से संतुष्ट हैं, संतोषी माँ की पूजा करने की जरूरत नहीं, आप अभी से संतुष्ट हैं। जो ही आपने लेने का ख्याल रखा, आप अरबपति हो, आप असंतुष्ट हैं। तो ग्रीड का एंटीडोट है कंटेंटमेंट, वो ये है, जाइए, आइए नहीं कहिए, आएगा। ठीक। तो टू गिव अप्रोच इन लाइफ, एक तो ये है। दूसरा वेस्टेज, हम अपने मन की, मन में बहुत एनर्जी है, बहुत क्रिएटिविटी है, हम आदि शक्ति पिछली बातों को सोचने में वेस्ट करते हैं। एक तो हो गया, एक उसके ऊपर सोचते रहो। तो पिछले भाई भी कह रहे थे कि लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, लेट पास्ट बी बाई पास्ट, फुल स्टॉप लगाइए, आपको जिंदगी में बहुत फायदा रहेगा। आप टैक्सी करते हैं तो उसको कहते हैं मीटर जीरो कर, पेट्रोल भरवाते हैं तो कहते हैं मीटर जीरो कर, और अपना मीटर जीरो नहीं करते। रात आती है सो के, अगले दिन फिर वही मीटर चालू रहता है, शरीर छोड़ के नया शरीर दे देता भगवान, तब भी मीटर चालू रहता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट समथिंग अफ्रेश डू दैट। और लास्ट वाला ये है, वो मानसिक है। तो कहा गया है जो तुझको कांटा बोए उसको वो तू फूल, सुना हुआ आपने, कि अपने मन में दूसरा कुछ भी करे वो उसका बिजनेस है। आपका बिजनेस क्या है? अपने मन में हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ भावना रखो, आपका मन खिल जाएगा। ये सोचो कि इसका भी भला हो, किसी सूखे हुए पौधे को भी देखो तू भी हरा हो जा। ये आपकी मानसिक शक्ति दुनिया को कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा बना देगी। ये एक बेस्ट तरीका है, पल्ले से आपका कुछ नहीं जाना। शुभ भावना कामना रखनी है, देने का अप्रोच रखना है, और पिछली बात को फुल स्टॉप लगा के आगे चलना है। आप देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। लास्ट बात एक और कर, थोड़ा रुक जाए। आपने सुना हुआ है नेकी कर दरिया में डाल, सुना हुआ है? अच्छा, आजकल हम क्या करते हैं, नेकी कर देते हैं, फिर बैठ के उसका रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट का फ्रूट आना देखते रहते हैं। मैंने इसके साथ ये किया, देखो अब ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, दरिया में नहीं डालते। तो एक्सपेक्टेशन जो है कि आपको दुख देगी, आपने नेकी की दरिया में डाल दी, आपको फल किसी और जगह से आएगा। मांगने वाला भी कहता है भगवान के नाम पे 2 रुपया दे दे, अपने नाम पे नहीं मांगता, आपको वापस करना पड़ेगा उसको। तो भगवान, तो आप जब देखी करते हैं तो उसका फल देने का कोई दूसरा सिस्टम है, कर्मा फिलॉसफी है। कर्मा फिलॉसफी के अनुसार जो आपका एंटाइटलमेंट है कोई आपसे ले जा नहीं सकता, आप ताले लगाओ या खुले छोड़ दो, और जो आपका नहीं है वो आप रख नहीं सकते। ये कर्मा फिलॉसफी है, इसलिए हमारे देश में ताले नहीं लगते थे। आजकल क्या है, 2 बिजनेसमैन क्रिकेट मैच देखने गए, एक कहता रे भाई हम लॉकर को बंद करना तो भूल गए, कहता है क्या फर्क पड़ता, हम दोनों तो यही है, फिर क्या खतरा है। आप आजकल हमारा ये हिसाब है, समझे आपने, इसलिए वो नहीं। तो ट्रस्ट आजकल हम LIC पर ट्रस्ट करते हैं, शायद मेरी लाइफ इंश्योर हो जाएगी, कितना धोखा है। इसलिए अपने कर्मों पर ट्रस्ट करिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, कर भला हो भला अंत भले का भला। ओम शांति।
जीवन को ज्योतिर्मय कर लो।